हाँ जी, खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। इससे पहले कि हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम में से सीखें, आए हम खुदावंद के हुज़ूर झुक जाएं और दुआ करें। कादर मुतलक खुदा, हम तेरे शुक्र गुज़ार हैं आज की सुबह के लिए, सारी रात की हफाजत और निगेबानी के लिए। कादर मुतलक खुदा, आज हम जो कुछ भी सीखें, हम सब के लिए तरबियत और नसीहत और रहनमाई और हौसले का वसीला बने। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। नए अहदनामा में से इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का ख़त, उसका तीसरा बाप, आज हम उसकी नामी आय से देखेंगे। काके न फड़ा दे ताके ना खेलता रहे, और पहली आय से पढ़ेंगे इफ़सियों के नाम पालूस रसूल का ख़त, उसकी पहली आयत तीसरे बाब की। इसी सबब से मैं पालूस, जो तुम गैर कौम वालों की खातर मसीह यसु का कैदी हूँ, शायद तुमने खुदा के उस फजल के इंतज़ाम का हाल सुना होगा जो तुम्हारे लिए मुझ पर हुआ, यानी ये कि वो भेद मुझे मकाशफा से मालूम हुआ, चुनाचे मैंने पहले उसका मुख्तसर हाल लिखा जिसे पढ़कर तुम मालूम कर सकते हो कि मैं मसीह का वो भेद किस कदर समझता हूँ, जो और ज़मानों में बनी आदम को इस तरह मालूम ना हुआ था जिस तरह उसके मुकद्दस रसूलों और नबियों पर रूह में अब जाहिर हो गया है, यानी ये कि मसीह यसु में गैर कौमें खुशखबरी के वसीला से मिरास में शरीक और बदन में शामिल और वादा में दाखिल हैं, और खुदा की उस और खुदा के उस फजल की बख्श से जो उसकी कुदरत की तासीर से मुझ पर हुआ, मैं इस खुशखबरी का खादम बना। मुझ पर जो सब मकसों से छोटों से छोटा हूँ, ये फजल हुआ कि मैं गैर कौमों को मसीह की बेकयास दौलत की खुशखबरी दूँ। नामी आयत, और सब बातों और सब पर ये बात रोशन करूं कि जो भेद अजल से सब चीज़ों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा, उसका इंतज़ाम क्या है, ताकि अब कलीसिया के वसीला से खुदा की तरह तरह की हिकमत उन हकूमत वालों और इख्तियार वालों को जो आसमानी मकामों में हैं मालूम हो जाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। पालूस रसूल की ज़िंदगी में हम देखते हैं कि वो खुशखबरी को बयान करता है, और खुशखबरी क्या है? मसीह की बशारत देना, मसीह के बारे में खबर देना, मसीह के बारे में बयान करना। काशी उन्हें दे दे, उन्हें दूसरी ए किताब पकड़ा, शाबाश, देखो पकड़ ला। और मसीह के बारे में दूसरों को बताना। कल रात जो हमने फिल्म देखी उसमें हमने यही सिलसिला देखा कि यीशु मसीह की पैदाइश से लेकर उसके ज़मीन पर उन तमाम मोजज़ात को, और फिर सलीब पर जान देने को, कब्र में उतारे जाने को, और मुर्दों में से ज़िंदा होने के बाद शिगिर्दों पर ज़ाहर होने तक, और दिखाया गया कि वो वाक्या क्या था कि यीशु मसीह जब आसमान पर उठाया गया तो तमाम शिगिर्द वहाँ पर मौजूद थे। अगर यही कहानी आपको सिर्फ इतनी बता दी जाए कि यीशु मसीह पैदा हुआ है और बाकी ना दिखाई जाए, तो आपको समझ आएगी कि वाक्या ही कभी यीशु मसीह ने लंगड़ों को, लूलों को, अंधों को, बहरों को और दूसरे बीमार लोगों को शिफा दी? कभी भी नहीं पता चलेगा। जैसे उस बाबे को जो कल भीख मांग रहा था और उससे पूछा कि क्या तुझे मसीह के बारे में पता है, तो उसने कहा कहीं नहीं दसा, किसे ने भी नहीं दसिया हले तक, सानू ते पता ही नहीं हो। सो कल रात जो हमने मूवी देखी उसमें यही वो तमाम کہانی تھی جو لوکا کی انجیل میں سے بیان کی گئی کہ یسوع مسیح پیدا ہوا، اس نے زمین پر زندگی گزاری، دکھ اٹھایا اور رومی حکومت کے حوالہ کیا گیا، اسے صلیب دیا گیا، وہ مردوں اور صلیب پر اس نے اپنی جان دی اور وہ مارا گیا اور پھر قبر میں اتارا گیا۔ جس ملک میں ہم رہتے ہیں، ہمارے ملک میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اس بات پر یقین نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح پیدا تو ہوا ہے لیکن کبھی بھی اس نے صلیب پر جان نہیں دی۔ سو یہ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ کل شام جب ہم فلم دیکھ کر گئے تو کچھ لوگ کہہ رہے تھے، جی آپ نے کرسمس کے موقع پر یسوع مسیح کے اس مصلوب ہونے کے بارے میں کیوں بتایا، آپ نے کیوں پوری فلم دکھائی، ہمیں صرف پیدائش ہی کے بارے میں بتانا چاہیے تھا۔ اگر ہم پیدائش ہی کے بارے میں بات کریں اور پھر یسوع مسیح کا جو کام جس کے وسیلہ سے نجات ہے، یسوع مسیح کی نجات کے بارے میں بات نہ کریں تو پھر ہم پیدائش کا کیوں ڈھول بھیڑتے ہیں؟ کیا پیدائش کا کوئی فائدہ ہوگا اگر یسوع مسیح کے بارے میں ہی نہ بتائیں کہ اس نے آپ کے گناہوں کے لیے صلیب پر جان دی ہے؟ کوئی فائدہ ہوگا نہیں۔ کون مانے گا؟ سب کہیں گے ٹھیک ہے جی، ایک عجیب پیدائش ہے، کنواری سے پیدا ہوا، بات ختم، بات ختم۔ لیکن جب ہم اس کے معجزات کے بارے میں بات کریں گے کہ اس نے پانیوں کو، طوفانوں کو اختیار دیا اور وہ ساکت ہو گئے، ایسا کوئی اور انسان نہ کر سکا ہے، نہ ہی کرے گا اور نہ ہی ہو سکتا ہے، صرف یسوع مسیح ہے۔ اگر ہم صرف یہی کہیں کہ یسوع مسیح کی پیدائش کنواری مریم سے پیدا ہوئی، فرشتوں نے آ کر کہا، یہ بات تو بہت سی دوسری کتابوں میں بھی لکھی ہے، دنیا کی بہت سی کتابوں میں لکھی ہے، بہت سی کتابیں پڑھنے کو ملی ہیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہاں جی ہم نے مان لیا، حالانکہ اس بات کو بھی ماننے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں، ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، نہیں ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہو نہیں سکتا۔ لیکن کل اس فلم میں یہی واضح کیا گیا کہ خداوند یسوع مسیح روح القدس کی قدرت سے پیدا ہوا۔ لوگ کیا کرتے ہیں جب ہم کہتے ہیں کہ وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا، تو لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا خدا نے، خدا کا کوئی غلط رشتہ تھا؟ یہ لوگوں کی سوچ ہے۔ اگر لوگوں کو نہ بتایا جائے، سمجھایا جائے، تو لوگ یہی سمجھیں گے کہ یہ کوئی غلط بات ہے۔ اور وہاں پر واضح طور پر کہا گیا، اور اس کتاب میں جسے کتاب مقدس کہا جاتا ہے لکھا ہے کہ وہ کنواری مریم سے پیدا ہوا کیونکہ روح القدس کی قدرت سے وہ پیٹ میں پڑا۔ تو پالوس رسول اسی بھید کے بارے میں بیان کرتا ہے نویں آیت میں۔ نویں آیت میں لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ جی آپ نے کیوں دکھائی، مجھے لوگوں کی فکر نہیں، مجھے خدا کے پیغام کی فکر ہے۔ اگر ایک بندہ اپنا منہ، ہاتھ، پیر مارے گا تو اس کی فکر نہیں، بلکہ اس کی فکر ہے جو 10-20 لوگ گرجا گھر میں آئے ہوئے ہیں جنہوں نے پہلے کبھی یسوع مسیح کی خوشخبری کے بارے میں نہیں سنا، تو وہ بہتر ہے یا پھر وہ ایک بندہ جو زبان چلائے کہہ رہا ہے کہ جی آپ نے غلط کیا؟ آپ کا کیا سوچنا ہے، یسوع مسیح کی آدھی خوشخبری دینی چاہیے یا پوری؟ پوری۔ تو یہی بات پالوس نے کی۔ پالوس رسول افسس کی کلیسیا کو کہتا ہے کہ تم نے جان لیا کہ یسوع مسیح ہے، تم نے جان لیا کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، تم نے جان لیا کہ اس نے تمہیں اپنے آپ میں بہت سی برکتیں دی ہیں، اب وہ کہتا ہے کہ اسے جا کر دوسروں کو بتاؤ۔ تو کیا لکھا ہے نویں آیت میں؟ پالوس آٹھویں آیت میں اپنے بارے میں کہتا ہے کہ مجھ پر جو سب مقدسوں سے چھوٹوں سے چھوٹا ہوں، یہ فضل ہوا کہ غیر قوموں کو مسیح کی بے قیاس دولت کی خوشخبری دوں، مسیح کی اس بے پناہ محبت کی خبر جا کر دوں، اور یہ نہ کہوں کہ مسیح پیدا ہوا۔ وہ کہتا ہے کہ مسیح پیدا ہوا اور کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا۔ اگر نہیں یقین تو میرے ساتھ ایک حوالہ نکالیں، پہلا کرنتھیوں اس کا 15 باب۔ اس خوشخبری کو پالوس کلیسیا کو بار بار جتاتا ہے اور کہتا ہے، कहता है पहला करिन्थियों उसका 15वां बाप उसकी पहली आय से, और यहां पर कहता है, अब ए भाइयों मैं तुम्हें वही खुशखबरी जताए देता हूं जो पहले दे चुका हूं, जिसे तुमने कबूल भी कर लिया था और जिस पर कायम भी हो। उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है। किस खुशखबरी के वसीला से? जो मैंने तुमको दी है, उसी के वसीला से तुमको निजात भी मिलती है, बशर्ते के वो खुशखबरी जो मैंने तुम्हें दी थी याद रखते हो। हमारी आने वाली नस्ल जो बच्चे हैं, उनमें बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनको अभी तक पूरे तौर पर पता ही नहीं कि क्या हुआ था, किस तरह मसीह को दुख उठाना पड़ा। एक और फिल्म है, वो आपको क्रिसमस के माह के बाद दिखाई जाएगी, जिसमें हकीकी तौर पर रोमी उस तमाम तरीकाकार को बयान किया गया कि किस तरह का कोड़ा इस्तेमाल किया गया था जो इंसान की चमड़ी को हड्डियों से उतार देता था। और आपको वो फिल्म दिखाएंगे, वो बाहर उधर अमेरिका में जिस बंदे ने बनाई उस फिल्म में, उसने वो उसका प्रोड्यूसर था, उसने सिर्फ जो रोल किया वो था नेजा मारने का। वो उस वक्त सलीब के पास खड़ा था और उसने ये रोल किया, उसका नाम है मेल गिब्सन। वो बंदा बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर है, उसने ये फिल्म बनाई। और लिखा है तीसरी आयत में, चुनाचे मैंने सबसे पहले तुमको वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ। खुशखबरी ये है कि वो पैदा हुआ और किताब मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ मरा, और क्या लिखा है, और दफन हुआ। इस दुनिया में जिसमें रह रहे हैं लोग ये यकीन नहीं करते। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह की खातर कोई और सलीब पर चढ़ा था। लोग कहते हैं कि यीशु मसीह नहीं बल्कि उसके शागिर्दों में से कोई सलीब पर उसके लिए मुआ। यहूदी कहते हैं कि यीशु मसीह वाकया ही नहीं मुआ था बल्कि उसका बदन चिरा लिया गया था। लेकिन पालूस इस बात पर जोर देता है, जिस पर हमें बात पर जोर देने की ज़रूरत है, कि वो दफन हुआ और तीसरे दिन किताब मुकद्दस के मुताबिक जी उठा। क्या हुआ? जी उठा। और मैंने आपको पिछले दिनों में बताया कि मेरे उस्ताद जिनसे मैं बाइबल सीखता हूँ, वो गए, उन्होंने कहा कि वो तमाम जगह वहाँ पर वैसे ही है, और ख़ासकर अभी तक यीशु मसीह की कब्र खाली है। यीशु मसीह की कब्र खाली है और बहुत सी दूसरी कब्रें हैं जिनमें हड्डियाँ पड़ी हैं, लेकिन उस पर उसकी कब्र में ना कोई हड्डी है। और ये इस बात का सबूत है कि वो मुर्दों में से वाहद है जो जी उठा था। और क्या लिखा है, और कायफा को और उसके बाद उन 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से ज़्यादा भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से अक्सर अब तक मौजूद हैं और बाज सो गए। पालूस रसूल हरगिज़ नहीं फिक्र करता कि कोई क्या कहेगा कि उसने दोबारा इस बात को दोहराया। वो इंसानी सोच को समझता है, और हम सब जानते हैं हमें बार बार अपने बच्चों को कहने की ज़रूरत है ताकि वो समझ जाएं। खुदा भी बार बार हमें कहता है कि मेरा बेटा इसलिए पैदा हुआ ताकि तुम उसके बारे में याद रखो। और यहाँ पर ही बात नहीं ख़त्म होती। अगर पैदाइश ही तक हमारा बड़ा दिन है और उसके बाद हम भूल जाते हैं कि यीशु मसीह कौन है, तो फिर अच्छा है कि जब भी हम फिल्म देखें या खुदा का कलाम पढ़ें तो पढ़ लें कि एक फरिश्ता आसमान से आया और उसने कहा कि तुम्हारे लिए निजात दहिंदा पैदा हुआ, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। मैंने कल उस नौजवान को कहा कि अगर ये बात है तो फिर अपनी बाइबल में से अगर तुझे ये पसंद नहीं तो फिर वो हिस्सा निकाल के अलहदा रख ले, ताकि तुझे पढ़ना ना पड़े कि यीशु मसीह ने दुख उठाया तेरे गुनाहों के लिए, यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया तेरे लिए। तो पालूस रसूल यही कहता है 9वीं आयत में, कहता है और सब पर ये बात रोशन करो। कौन सी बात? खुशखबरी, जिसके लिए वो कैद में है। सब पर यह बात रोशन करो, सब पर यह बात रोशन करो कि जो भेद अजल से सब चीजों के पैदा करने वाले खुदा में पोशीदा रहा, उसका इंतजाम, उसका तरीका क्यार क्या है। इस भेद को पालूस कहता है कि जाहिर करो कि यीशु मसीह पैदा हुआ, मुर्दों में से जी उठा, मर गया और फिर आसमान पर चढ़ गया, और जो कोई इस पर ईमान लाएगा वो उसकी कलीसिया है। कलीसिया जिसे चर्च इंग्लिश में कहा गया है, उर्दू में हम गिरजा भी कहते हैं, वो जगह जहां पर इबादत की जाती है। और फिर कहा गया है कि हम उसका बदन और उसकी कलीसिया और उसकी हैकल हैं। तो पालूस कहता है कि मैं गैर कौमों को खुशखबरी और मसीह की दौलत और उस बयान के बारे को बयान करने के लिए अलहदा हुआ, अब तुम सब जाकर क्या करो, इस बात को रोशन करो, उजागर कर दो। रोशन कैसे करते हैं? बयान करना, उसे बता देना। पालूस कहता है ये सब बातें रोशन करो, जो भेद अभी तक मसीह की जिंदगी बहुत से कबीलों और नस्लों तक नहीं पहुंची, और वो भेद का भेद ही है। जैसे कल वाला फकीर कहता था, मुझे तो पता ही नहीं आ, कई दसा ही नहीं। बहुत दफा हम अपने घर पर आने वाले भिखारियों को दवा दव कुछ ना कुछ दे देते हैं। उनसे पूछें कि आपके साथ हुआ क्या, आप क्यों भीख मांग रहे हैं, क्योंकि आज भीख कारोबार बन गई है। आज भीख कारोबार बन गई है, आसान तरीका बन गया है रोटी खाने का, और घर बैठकर फ्री लोगों के पैसों पर जीने का। मैंने 25-25 मरबे वाले लोगों को भीख मांगते देखा है। वो आपके सामने ऐसे होंगे कि जैसे उनका कोई वारिस ही नहीं, और फिर उन्हीं को तुम देखोगे कि वो गाड़ियों में, ऐसी ऐसी गाड़ियों में घूमते हैं जो अमीर लोगों के पास होती हैं। सो जब भी कोई भीख मांगने वाला आए, उससे पूछें, भाईजान, चाचा जी, बाबा जी, भैन, तेरे नाल होया की, तू कादे तो इस हालत आ गई हैं, ताकि अगले को पता चले। सो पालूस रसूल इसी बात को कहता है, उसके वसीला से जब आप किसी से बात करेंगे तो आप बताने वाले बनेंगे कि मैं तेरे लिए दुआ करूंगी, यीशु मसीह तुझे बरकत दे, यीशु मसीह तुझे बरकत दे। हम गिरजाघर में नाम तो यीशु मसीह लेते हैं, इसलिए बाहर भी लेने की ज़रूरत है, अपने अड़ोस पड़ोस में भी, कि यीशु मसीह तुझे बरकत दे, क्योंकि वही बरकत दे सकता है, कोई और नहीं। ना ही किसी इंसान के पास बरकत है और ना ही दे सकता है, और इस बरकत को, इस भेद को दूसरों तक पहुँचाने की ज़रूरत है। और ये पालूस की तरफ से सलाह, हुक्म, हौसला अफजाई है कि इस भेद को, खुशखबरी को जो पोशीदा रहा है इब्तदा ही से, जिसे ना फरिश्तों को जिसकी समझ थी, ना किसी और को बताया गया, यो भेद मुझ पर जाहिर हुआ है, तुम जाकर दूसरों को बताओ। आए हम खुदावंद के हजूर झुकें और खुदावंद का शुक्र करें कि उसने ये भेद हमें बख्शा है, ताकि हम इस भेद को, इस खुशखबरी को दूसरों तक पहुंचाएं। खुदा बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरे कलाम के लिए हम सब को छू, बड़ी बरकत दे।